अध्याय दो का पहला श्लोक। संजय उवाच। संजय ने कहा, मधु जैसे मीठे काम के हंता शिव बाबा ने इस प्रकार संबंधियों के मोह में करुणा से भरे अश्रुपूर्ण व्याकुल नेत्रों से विषादयुक्त हुए उस अर्जुन को यह वचन बोले। अध्याय दो का दूसरा श्लोक। भगवान उवाच। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, असमय में अनार्य सेवित स्वर्ग में ना ले जाने वाली यह सामाजिक अपकीर्तिकारक मलिनता क्षत्रिय होते हुए भी तुझे कहाँ से आ गई। अध्याय दो का तीसरा श्लोक। हे पृथ्वीराज, नपुंसक मत बनो, ये तुम्हारे कुल में प्रशंसा के योग्य नहीं। हे शत्रुतापी, क्षुद्र हृदय की आकस्मिक दुर्बलता छोड़कर उठो। अध्याय दो का चौथा श्लोक। अर्जुन उवाच।
कथम
अर्जुन ने कहा, हे मधु जैसे मिठास भरे काम के हंता, भीष्म जैसे बाबाओं और महान प्राचार्य द्रोण के प्रति धर्म युद्ध में मैं ज्ञान बाणों से कटाक्ष पूर्वक अपमान से कैसे युद्ध करूँगा। हे कामारी मर्दन, वे मुझे बचपन से ही बहुत प्यार देते आ रहे हैं, सम्माननीय और पूजनीय हैं। अध्याय दो का पांचवा श्लोक।
गुरु
महानुभाव गुरुओं को उनके धर्म में अनिश्चय की मौत मारने की अपेक्षा इस लोक में भीख मांगकर खाना भी अच्छा है, क्योंकि मान मर्तबा के लोलुप और धनेच्छुक गुरुओं को स्वधारणायुक्त जीवन शैली से मारकर तो यहाँ विकल्पों के खून से सने आत्मग्लानी से भरे हुए इन भोगों को ही भोगूंगा। अध्याय दो का छठवां श्लोक। और हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, अथवा कि हम धर्म युद्ध में निश्चित रूप से जीतेंगे, अथवा यदि वे हमें जीतेंगे, यह भविष्यफल ठीक ठीक हम नहीं जानते। जिन्हें मारकर हम जीना ही नहीं चाहते, संकल्पों के खराब खून वाले, वे राष्ट्र की पूंजी स्वार्थ में धरे बैठे धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव सामने ही खड़े हैं। अध्याय दो का सातवां श्लोक।
कार्पण्य दोषो पहतस्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेता यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हंशार्थि मां त्वां प्रपन्नम्।
नीचे गिरी हुई पापपूर्ण कलियुगी मन बुद्धि की दीनता के दोष से विकृत स्वभाव वाला सद्धर्म कर्म की बातों में महामूर्ख में आप त्रिकालदर्शी भगवान से पूछता हूँ, मेरे लिए जो भलाई की सद्धर्मानुकूल ऐसी निश्चित बात हो वह मुझे बताइए। मैं आपका शिष्य हूँ, हर प्रकार से आपकी शरण में हूँ। मुझे शिक्षा दीजिए। अध्याय 2 का 8वां श्लोक।
नहीं प्रपश्यामि मम अनुत्या यच्छोक मुच्छोषणम् इन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्न मृत्तम् राजं सुराणाम् अपि चाधिपत्यम्।
क्योंकि पृथ्वी पर शत्रु विहीन ऐश्वर्यवान सारे विश्व का राज्य और देवों का स्वामित्व पा करके भी आप सर्वशक्तिवान के सिवा जो इंद्रियों को सुखाने वाले मेरे शोक को दूर करे वैसा कल्याण मैं नहीं देखता। अध्याय 2 का 9वां श्लोक। संजय उवाच। शत्रुतापक निद्राजीत अर्जुन ह्यूमन बच्चियों के प्रकृति वेत्ता जितेंद्रिय गोविंद से ऐसा स्पष्ट कहकर कि मैं सम्माननीय गुरुजनों से धर्म निर्णायक युद्ध नहीं करूंगा, इतना सीधा कहकर अभी अभी दुख और संशयहर्ता की सीख को मान के भी ना करके चुप हो गया। अध्याय 2 का 10वां श्लोक। हे भरतवंशी राजा, यादव सेना सहित कौरवों और पांडवों दोनों सेनाओं के बीच में शोकाकुल उस भीड़ भरे माहौल में मायूस हुए अर्जुन से इंद्रजीत अर्थात जगतजीत शिव बाबा प्रसन्न हुए के समान उसका उमंगोत्साह बढ़ाने लिए यह वचन कहने लगे। अध्याय 2 का 11वां श्लोक। भगवान उवाच।
अशोचानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासूनगतासूंश नानुशोचन्ति पंडिता।
भगवान ने कहा, तू अशोचनीय सन्नद्ध विनाशी दैहिक संबंधों का शोक कर रहा है तथा दुखी होते होते भी आत्मज्ञानियों जैसे वचन बोलता है। विद्वान लोग सद्धर्म के प्रति अनिश्चय से मरने और विधर्मियों ऊपर निश्चय में जीने वालों का शोक कभी नहीं करते। अध्याय 2 का 12वां श्लोक। मैं अक्षयात्म ज्योतिरूप शिव कोई समय ना था, ऐसा नहीं है, ऐसे ही तू नहीं था अथवा ये नेतागण ही नहीं थे और अब बाद में बेहद ड्रामा के आत्म स्टार रूप हम सब नहीं होंगे, ऐसा भी नहीं है। हम आत्माएं अविनाशी हैं, देह विनाशी है। अध्याय 2 का 13वां श्लोक। जैसे आत्मा की इस देह में उत्तरोत्तर सत रज तम वाली कुमार युवावस्था और बुढ़ापा है, वैसे ही चतुर्युगी में क्षीण बलवीरे के दूसरे दूसरे शरीरों की प्राप्ति होती है। सच्ची गीता ज्ञान से आत्मस्थ धैर्यवान ब्रह्मावत्स कभी भी उस विषय में मोह नहीं करते। अध्याय 2 का 14वां श्लोक। हे कुंती पुत्र, कर्म इंद्रियों के विषय तो घड़ी घड़ी परिवर्तनशील, सर्दी गर्मी सुख दुख दाता है, आने जाने वाले हैं, अधोगामी स्वर्गीय सुखों की भेंट में भी अनित्य हैं। हे भरतवंशी, उनको तू अपनी किसी भी तिकड़म बिना सहन कर। अध्याय 2 का 15वां श्लोक। हे भोगी आत्मारूप पाठधारियों में सर्वश्रेष्ठ, दुख सुख में समान रहने वाले जिस धैर्यवान पुरुष को ये कोई भी विषय भोग कर्म करते भी व्यथित नहीं करते, वह आत्म ज्योति में एकाग्र व्यक्ति अवश्य ही अमृत्व के लिए योग्य बनता है। अध्याय 2 का 16वां श्लोक। असत का अस्तित्व नहीं होता एवं कोई भी सत्य का कल्पांतकारी महाविनाश में या किसी भी चतुर्युगी में अभाव नहीं होता। जैसे सृष्टि बीज अर्थात महादेव अर्थात आदम देह से भी सदाकाल है और रहेगा, इन सत्सत दोनों का भी निर्णय कपिल जैसे तत्वज्ञानियों द्वारा देखा गया है। अध्याय 2 का 17वां श्लोक। जिस मानवीय सृष्टि वृक्ष के बीज महादेव द्वारा यह सारा अश्वत्थ नामक सृष्टि वृक्ष फैला है, उसको तो अविनाशी जान। इस अविनाशी जगतपिता स्वरूप साकार बीज का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है, कल्पांत में भी वह अकाल मूर्त है। अध्याय 2 का 18वां श्लोक।
अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरेण अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युत्य स्वभारत।
ऐसे तो नित्य अविनाशी माप न करने योग्य अन्य सभी अनुरूप अर्थात अति सूक्ष्म देहधारी आत्माओं के ये शरीर चतुर्युगी के जन्म जन्मांतरों में भी नाशवान कहे हैं। अतः हे भरतवंशी, धर्म युद्ध कर, क्योंकि आत्म धर्म ही अविनाशी है। अध्याय 2 का 19वां श्लोक। जो इस देहधारी आत्मा को मारने वाला समझता है और जो इसे कभी मरा हुआ मानता है, वे दोनों ही ठीक नहीं जानते। वो देहरूप वृक्ष का बीज है, यह आत्मा कल्पांत के महाविनाश में भी ना किसी को मारता है और ना मारा जाता है। अध्याय 2 का 20वां श्लोक।
न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भवितावान् भूय अजो नित्य शाश्वतोयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे।
यह कभी ना जन्मता है और ना मरता है, हाँ सहज सहज देह रूप वस्त्र उतारता भी है या होकर फिर से सृष्टि रंगमंच पर नहीं होगा, ऐसे भी नहीं है। अजन्मा नित्य सनातन कल्प कल्प की शांत स्वधर्म वाली पुरातन यह अविनाशी आत्मा देह हनन कराने के उपक्रम होते भी नहीं मारा जाता। अध्याय 2 का 21वां श्लोक। हे पृथ्वीपति, जो इस ज्योतिर्मय अनुरूप आत्मा को नित्य जन्म रहित अक्षय व अविनाशी जानता है, वह अपने स्वभाव संस्कार की अविनाशी आत्मा होते भी किसको कैसे मरवाता है और यहाँ प्रकृति के अधीन भी किसको मारता है। अध्याय 2 का 22वां श्लोक।
वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि यन्यानि संयाति नवानि देहि।
जैसे स्वर्ग में आत्माभिमानी श्रेष्ठ मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए स्वेच्छा से ग्रहण करता है, उसी प्रकार नरनिर्मित नरक में देहभानी पुराने शरीरों को अपनी अनिच्छा से छोड़कर आत्मा दूसरे नए शरीरों को बरबस ग्रहण करती है। अध्याय 2 का 23वां श्लोक। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काटते, इसको अन्य जड़त्वमय तत्वों जैसी अग्नि नहीं जलाती, इसको अदर्शनीय हवा नहीं सुखाती और ईश्वरीय ज्ञान जल की पवित्रता के सिवाय जल नहीं भिगोता। प्रत्येक चतुर्युगी पूर्व के महाविनाश में भी यही बात है। अध्याय 2 का 24वां श्लोक।
अच्छे नित्य सर्वगत स्थानुर अचलोयम् सनातनः।
यह आत्म ज्योति बिंदु सदा अकाट्य है और अग्नि जल द्वारा कभी ना ही जलता भीगता है और निस्संदेह गर्म हवा से कभी सूखता नहीं। यह नित्य अविनाशी है, स्थितशील है। मन बुद्धि जैसी अदर्शनीय शक्ति होने से त्रिलोक में सर्वगामी है, सनातन और अचल है। अध्याय 2 का 25वां श्लोक।
अव्यक्तोयम् अचिन्त्योयम् अविकार्योयम् उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि।
यह अव्यक्त है, यह अचिंत्य है, यह विनाशी पंचभूतों का संग न रहने पर सदा निर्विकारी बताई जाती है, इसलिए इसको ऐसा पृथ्वी जलादि पंचभूतों से पृथक जानकर शोक करने के योग्य नहीं है, क्योंकि आत्मा सुख शांति रूप है। अध्याय 2 का 26वां श्लोक।
अथ चैनं नित्य जातं नित्यं मामन्यसे मृतम्
और यदि इसे सदा जन्मने वाला अथवा नित्य मरने वाला मानता है तो भी है अष्टमूर्तियों वाला दीर्घबाहु, तू इस तरह शोक करने योग्य नहीं है। अध्याय 2 का 27वां श्लोक।
जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर् ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्येते न त्वं शो।
क्योंकि जन्मने वाले की मृत्यु निश्चित है और उसी तरह देह द्वारा मरने वाले का जन्म निश्चित है। देहभान है तो जन्म मृत्यु भी रहेगी, अतः ना टलने योग्य बात में अविनाशी ड्रामा समझ तू शोक करने योग्य नहीं है। कल्प कल्प जन्म मृत्यु का दुख नरक में होता ही है। अध्याय 2 का 28वां श्लोक। हे भरतवंशी, सृष्टि आदि काल में भी प्राणियों का अंत और आदि अदृश्य है, मध्य जीवन व्यक्त है, मृत्यु बाद या कल्पांत अर्थात महाविनाश में भी अव्यक्त हैं। उस हूभू कल्प की आवृत्ति में क्या शोक करना, किंतु पुरुषोत्तम संगम में 100% आत्मस्थ बन जाने से। अध्याय 2 का 29वां श्लोक।
आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्य आश्चर्यवच्चैन मन्य शृणोति श्रुत्वापि न वेद न चैव कश्चित्।
इस हीरो को कोई नंबर वार जानकार आश्चर्य से बताता है और दूसरा वैसे ही आश्चर्य से देखता है और दूसरा कोई कुछ जानते हुए भी इसको आश्चर्य से ही सुनता है और कोई अनास्थावान नास्तिक पूरा अधूरा अनमने से सुनकर भी इसे नहीं जान पाता। इसीलिए संसार में नंबरवार सुखभोगी हैं। श्लोक से संबंधित शिव बाबा के महावाक्य। शंकर क्या करते हैं? उन हीरो का पार्ट ऐसा वंडरफुल है जो तुम विश्वास कर ना सको। मुरली तारीख 14 मई 1970। अध्याय 2 का 30वां श्लोक। हे ज्ञान आभा में रत अर्जुन, यह सृष्टि बीज हीरो परम प्लस आत्मा सबके शरीरों में पुरुषोत्तम संगम के नंबरवार पुरुषार्थ से प्राप्त सहज राजयोग की ऊर्जा से सदा अवध्य है। इसलिए तू इस धर्म युद्ध में हाजिर सभी प्राणियों का भी इतना शोक करने के लिए योग्य नहीं है। अध्याय 2 का 31वां श्लोक। इसके अलावा अपनी आत्मा के क्षात्र धर्म को भी देखकर तू विचलित होने योग्य नहीं है, क्योंकि धर्म युद्ध के सिवाय चारों वर्णों में विशेष रूप से तेरे जैसे क्षत्रिय के लिए क्षात्र धर्म से मिले राज्य रक्षा सिवा कोई दूसरा कल्याण नहीं है। अध्याय 2 का 32वां श्लोक। सिविल वॉर द्वारा अनायास प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार वाले ऐसे महान धर्म युद्ध को हे पृथ्वीपति सुखी क्षत्रिय जन ही पाते हैं। श्लोक से संबंधित शिव बाबा के महावाक्य। जो मायावी विकारों के युद्ध के मैदान में देह व देहभान को छोड़ेंगे वे स्वर्ग में आवेंगे। मुरली तारीख 6 मई 1967 पृष्ठ 1 अंत। अध्याय 2 का 33वां श्लोक।
अथ चेत्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि।
किंतु यदि तू गेट वे टू हेवन वाला यह धार्मिक अहिंसक महाभारत युद्ध नहीं करेगा तो अल्लाह अव्वल दीन के सत्य सनातन स्वधर्म और कीर्ति को नष्ट करके द्वैतवादी नारकीय दैत्यों के हिंसक धर्म वृद्धि के पाप का ही भागी बनेगा। अध्याय 2 का 34वां श्लोक। और संसार के दुखी अशांत लोग निरंतर तेरी अपकीर्ति करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए यहाँ अपकीर्ति मौत से भी बढ़कर है। अध्याय 2 का 35वां श्लोक। महारथी तुझको क्षत्रिय योद्धा होते हुए भी विरोधियों के भय से धर्म युद्ध से भयभीत व विमुख हुआ मानेंगे। और जिनके मन में तेरा महानतम धनुर्धर होने का इतना अधिक मान है, वे ही अविनाशी भारत के सत्य सनातनी लोग तुझको तुच्छ समझेंगे। अध्याय 2 का 36वां श्लोक। और तेरे 2500 वर्षों से सदा विधर्मियों में कन्वर्टेड विरोधी तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहुत सी गंदी, असहनीय और सरासर झूठी, ग्लानी भरी, अनकहनी बातें बोलेंगे। उससे बढ़कर संसारियों से मुंह छुपाने जैसा और क्या बड़ा दुख होगा। अध्याय 2 का 37वां श्लोक। हे देहभान नाशिनी कुंती पुत्र, या हौसले से लड़ते लड़ते मौत पाई तो स्वर्ग पाएगा, अथवा जीतकर देवासुरात्माओं की सारी धरनी को भोगेगा। इसलिए गेट वे टू हेवन महाभारत युद्ध के लिए निश्चय कर उठ खड़ा हो। विश्व विजय तेरा ही जन्म सिद्ध अधिकार है। अध्याय 2 का 38वां श्लोक। सुख दुख को, लाभ हानि को और जय पराजय रूप इन सभी सांसारिक द्वंद्वों को समान मान करके स्वयं स्थिर हो, बाद में धर्म युद्ध के लिए तैयार हो जा। ऐसे देहधारियों के बेलगाव में रहने से आत्मा को पाप नहीं लगेगा। देखिए गीता के 18वें अध्याय का 17वां श्लोक। अध्याय 2 का 39वां श्लोक। हे पृथ्वीपाल अर्जुन, यह मत तेरे ही आदि रूप कंपिलावासी कपिल मुनि के सांख्य शास्त्र में संपूर्ण व्याख्या से कही गई है, और अब कर्मयोग में इस मत को मेरे से विस्तार से सुन। जिस श्रेष्ठतम मत से युक्त हुआ तो कर्मों के बंधन को नष्ट कर देगा। अध्याय 2 का 40वां श्लोक। इस योग में पूर्व जन्मों के पुरुषार्थ का नाश नहीं होता, उल्टा फल भी नहीं होता। इस कर्मयोग की धारणा का अल्पांश भी पुरुषोत्तम संगमयुगी शूटिंग अनुसार अनेक जन्मों के महान भय से रक्षण करता है। योगुर्जा से ही सारे काम होते हैं। अध्याय 2 का 41वां श्लोक। हे कुरुवंशीय हर्ष दाता प्रहलाद, इस योग में निश्चयात्मक ज्ञान एक से आता है, अतः श्रीमत एक अद्वैत शिव बाबा की ही है, जबकि धर्म निरपेक्ष अनिश्चयी लोगों की मते निश्चय ही अनेक द्वैतवादी विधर्मों से निकली सांप्रदायिक शाखाओं की असंख्य हैं। अध्याय 2 का 42वां श्लोक। पार्थ, वेदवाद विवाद में लिप्त रहने सिवाय दूसरा मार्ग नहीं। देखिए गीता के 2 अध्याय का 45वां, 52वां 53 श्लोक। ऐसा कहने वाले मंदिर मूर्ति पूजा ही ब्रह्मा के भक्त बीकेस अविवेकी जन है, जो ये फली फूली मीठी मीठी वाणी बोलते हैं। पश्चिम के श्रीनाथ मंदिर में मालपुए खाने वाले भोगी हैं। अध्याय 2 का 43 श्लोक। वे सांसारिक अंतहीन कामनाओं वाले हैं। स्वर्गीय सुख पाना ही परम पुरुषार्थ है। श्रीनाथ जैसे परमार्थ रहित व सांसारिक 56 भोग वाले भोगैश्वर्य प्राप्ति हेतु जन्म जन्मांतर के कर्मफल प्रदायी विशेष स्वाहा स्वाहा आदि जैसी फालतू क्रियाकांडादि की बहुत बातें करते हैं। अध्याय 2 का 44 श्लोक। उस मीठी वाणी से खिंचे चित वाले और दैहिक भोगैश्वर्य में अच्छे से आसक्त जनों की सरासर दिखावटी और झूठी परंपराओं में आसक्त ऐसी निश्चयात्मक बुद्धि कभी भी आत्मा के 84 जन्मों की संपूर्ण गहराई रूप समाधि में स्थित नहीं होती। अध्याय 2 का 45 श्लोक। हे अर्जुन, वेद 3 गुणों के विषय वाले हैं, यानी रजो और तमोगुणी भी हैं। तू यहाँ विष्णु लोकीय 3 गुणों से परे सदा 16 कलाओं से भी अतीत मेरे समान सत्वगुण में स्थिर हुआ सुख दुखादि से द्वंद्व मुक्त प्राप्ति व उसकी सुरक्षा रहित पन, क्योंकि योगक्षेमम वहां में हम। देखिए गीता के 9वें अध्याय का 22 श्लोक। अतः देहभान छोड़ सदाकाल आत्म बिंदु की स्थिति वाला बन जा। अध्याय 2 का 46 श्लोक। चारों ओर से संपूर्ण भरपूर ज्ञान जल का मानसरोवर मिले तो जितना प्रयोजन छोटे छोटे मटमैले पोखरों में हो उतना ही विशेष एडवांस ज्ञान सागर के ज्ञानी ब्राह्मण का सभी ब्रह्मामुख निसृत वेदवाक्यों जैसी मंथन रहित मूल्यों में होता है। अध्याय 2 का 47 श्लोक। तेरा श्रीमदनुसार कर्मयोग में ही अधिकार है, सांसारिक फल में कभी भी नहीं, इसलिए कर्मफल का कारण मैं ही हूँ, ऐसे मत बनो। देखिए गीता के 3 अध्याय के 27 श्लोक से 30 श्लोक तक। इसलिए तुम्हारी लोक संग्रहार्थ कर्मत्याग में कभी आसक्ति ना हो। कर्मयोगी बनना है, कर्म सन्यासी नहीं। अध्याय 2 का 48 श्लोक। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। हे सच्ची गीता एडवांस ज्ञान धन जेता अर्जुन, आसक्ति त्याग कर योगारूढ़ हुआ अन्य द्वंद्वों जैसी सफलता असफलता में भी समान होकर कर्मफल त्यागी बनकर कर्मों को कर। हर प्रकार के द्वंद्वों में सदाकाल समत्व ही योग कहा जाता है। अध्याय 2 का 49 श्लोक।
बुद्धियोगा धनंजय बुद्धौ शरणं
ज्ञानधन जेता अर्जुन, एक सर्वोत्तम शिव में बुद्धियोग लगाने सिवा केवल कर्म करना अति नीचा है। बड़े बड़े धर्माधीश बुद्धिमानों की भी बुद्धि त्रिनेत्री शिव बाबा की शरण ले। कर्म फल के इच्छुक कंजूस हैं, विश्व कल्याणार्थ किसी को कुछ नहीं देना चाहते। श्लोक से संबंधित शिव बाबा के महावाक्य। कंजूस पश्चिमी सभ्यता के प्रतीक, श्रीनाथ पुजारी जैसे लोग लोक कल्याण लिए कुछ भी त्यागना नहीं चाहते। सारे देशी गाय वाले घी के माल बेचकर भी खुद ही खा जाते हैं। अतः इन उड़ीसा जैसे गरीबों के राज्य में पूरब के जगन्नाथ का सादा भोग खाना है। इसीलिए बाबा ने मुरली तारीख 26 जून 1970 में बोला, सभी से फर्स्ट क्लास शुद्ध खाना है, दाल या कड़ी, चावल, आलू। अध्याय 2 का 50वां श्लोक। बुद्धियोगी इस लोक में दोनों प्रकार के अच्छे और बुरे माने जाने वाले कर्म, जैसे दान धर्म या रिश्वत, चोरी चकारी आदि भी छोड़ देता है। कर्मों में कुशलता ही योग है। अतः क्षेत्र रूप अर्जुन के मुकर्रर रथ प्लस क्षेत्रज्ञ शिव ज्योति के योग में जुट जा। अध्याय 2 का 51वां श्लोक। क्योंकि शिव बाबा से बुद्धि लगाने वाले ज्ञानीजन विश्व कल्याण के कर्म से उत्पन्न हुए फल को त्याग कर जन्म जरा मरणादिक बंधनों से विशेष रूप से मुक्त हुए, पाप रहित अतीन्द्रिय सुख वाले कलातीत विष्णुलोकीय परमपद को वैकुंठ में प्राप्त करते हैं। अध्याय 2 का 52वां श्लोक। जब तेरी द्वापुर से ही विकारी बनी बुद्धि, शास्त्र, दैहिक गुरुओं, मीडिया आदि की सुनी सुनाई और विदेशियों विधर्मियों की अंधश्रद्धा युक्त झूठी बातों के मोह रूप कीचड़ को भली भांति पार करेगी, तब मिसाइलों से भस्मीभूत होने वाली दुनिया के वैराग्य को प्राप्त होगा। श्लोक से संबंधित शिव बाबा के महावाक्य। सुनी सुनाई बातों पर ही भारतवासियों ने दुर्गति को पाया है, अभी भी पाते जा रहे हैं। मुरली तारीख 30 जनवरी 1971, पृष्ठ 4 आदि। अध्याय 2 का 53वां श्लोक। श्रुति प्रतिपन्ना दे यदास्थासतिनिश्चला समाधावचना बुद्धि तदा योगमवाप्स्यसि। जब तेरी श्रुतियों से भ्रमित बुद्धि साक्षात आए हुए परमात्मा की स्मृति में अविचल स्थिर होगी, तभी अति सूक्ष्म आत्मस्टार रूपी रिकॉर्ड के अंदर 84 जन्मों के स्वदर्शन चक्रगत सागर मंथन में लगेगी, तब योग की समाधिगत स्थिति को पालेगा। श्लोक से संबंधित शिव बाबा के महावाक्य। इन शास्त्र आदि पढ़ने से आज तक भी किसको सदगति नहीं मिली है? मनुष्य आत्माओं की सदगति का ज्ञान इन शास्त्रों में नहीं है। मानवीय गीता से भी किसी की सदगति हो नहीं सकती। मुरली तारीख 20 मई 1992, पृष्ठ 1 आदि। अध्याय 2 का 54वां श्लोक। अर्जुन उवाच। अर्जुन ने कहा, क प्लस ईश अर्थात हे ब्रह्मा रूपी बेसमझ बैल के ईश्वर, बेहद नेपाल के चेतन पशुपति नाथ, स्थिर बुद्धि की अर्थात संपूर्ण प्लस अधि प्लस थसे, निरंतर आत्म स्टार की पूरी गहराई में स्थिर की क्या परिभाषा है? स्थिर बुद्धि आहार विहार रहन सहन आदि में कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? स्थिर बुद्धि की सारी माहिती चाहिए। अध्याय 2 का 55वां श्लोक। भगवान उवाच।
प्रजहाते यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनुगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितः प्रज्ञस्य तदोच्यते।
भगवान ने कहा, हे पृथ्वीपति, मनसा संकल्पों में चलने वाली सभी कामनाओं को मनुपुत्र मानव जब भली भांति त्यागता है, अपने आप से आत्मस्तार में या परमात्म स्मृति में ही संतुष्ट रहता है, तब स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है, अन्यथा नहीं कह सकते। फुटनोट। बाबा ने मुल्ली में कहा है, इच्छा मात्रम अविद्या। मुल्ली तारीख 10 अप्रैल 1968। देखिए गीता के 4थे अध्याय का 19वां श्लोक, 6वें अध्याय का 4था श्लोक, 18वें अध्याय का 24वां श्लोक इत्यादि। अध्याय 2 का 56वां श्लोक। दुखों में उद्वेग बेचैनी से रहित मन वाला, लौकिक सुखों में अनासक्त रहने वाला, इच्छा रहित तथा पुरुषोत्तम संगम युग में खास राग भय क्रोध से रहित ज्ञान नेत्र से इस प्रकार ईश्वरीय महावाक्यों को जानने वाला मनन चिंतनशील व्यक्ति स्थिर बुद्धि कहा जाता है। अध्याय 2 का 57वां श्लोक। जो सिवा परमपिता प्लस परमात्मा के सब ओर से पूरा स्नेह रहित हुआ, उन सांसारिक शुभ या अशुभ को पाकर साक्षी दृष्टा की भांति ना पूरा आनंदित होता है, ना दुखी होकर द्वेष करता है। उसकी पारखी और निर्णयात्मक बुद्धि दृढ़ता पूर्वक आत्मा में स्थिर है। अध्याय 2 का 58वां श्लोक। और जब यह योगी कछुए के अंगों की तरह मन के संकल्पों सहित श्रेष्ठ और भ्रष्ट दसों इंद्रियों को इंद्रियों के रूप रस गंध आदि विषय भोग सब ओर से निरंतर संपूर्ण खींच लेता है, तब उस योगी की बुद्धि दृढ़ता से आत्मस्थिर हो जाती है। अध्याय 2 का 59वां श्लोक। विषय भोग त्यागी देहधारी पुरुष के भोग तो विशेषतः हटते हैं, किंतु रस लेने की पूर्व अनुभूतियों वाली मानसिक आसक्ति नहीं हटती, अर्थात इस राजयोगी की तो आसक्ति भी कलातीत अतीन्द्रिय सुख के परमार्थ को देखकर पूरी ही हट जाती है। अध्याय 2 का 60वां श्लोक। क्योंकि हे देहभिमान नाशिनी कुन अर्थात देहम दारेति कुंती के पुत्र, प्रयत्न करते हुए बुद्धिमान पारखी पुरुष की भी अच्छे से मत डालने वाली खास नेत्र और कामेंद्रिय सहित अन्य इंद्रियां अर्जुनरथ के सर चढ़े चंचल कपिध्वज वाले मन को बलपूर्वक खींच लेती हैं। अध्याय 2 का 61वां श्लोक। इंद्रियों को पूरा वश करके मेरे आश्रित हुआ। मुझ शिव में ही मन लगा, क्योंकि जिस मन बुद्धि वाली ज्योति बिंदु आत्मा की इंद्रियां वश में हैं, उसकी बुद्धि जन जन चंचल बने मन की अस्थिरता से हटकर दृढ़ता पूर्वक स्थिर रहती है। अध्याय 2 का 62वां श्लोक। विषय भोगों का ध्यान करने वाले पुरुष को उन विषयों में आसक्ति अर्थात लगाव उत्पन्न होता है। आसक्ति से मनसा संकल्प में कामना भली भांति पैदा होती है। दैहिक विकारी कामना प्रायः पूरी न होने से अनियंत्रित क्रोध जोर से उत्पन्न होता है। अध्याय 2 का 63वां श्लोक। क्रोध से संपूर्ण मोह अर्थात मूर्ता आती है। भरपूर मूर्ता से जर्जरी भूत बुद्धि द्वारा स्मृति नाश होता है। स्मृति के भ्रष्ट होने से परख और निर्णय शक्ति रूपा समझ शक्ति अर्थात बुद्धि नष्ट होती है, और बुद्धि नष्ट होने से धर्म पर अनिश्चय रूपी मृत्यु होती है। अध्याय 2 का 64वां श्लोक। परंतु राग द्वेष से विहीन अनुशासित मन वाला पक्षपात रहित साक्षी दृष्टा राजयोगी राजयोग शासित आत्मा की वशीभूत इंद्रियों से धर्मानुकूल अर्थात हिंसाहीन समुचित भोग भोगते हुए अविनाशी प्रसन्नता को पाता है। सुख देने से ही सदा सुख होता है। अध्याय 2 का 65वां श्लोक। प्रसन्नता से इस योगी के जन जरादि सब दुखों का नाश हो जाता है, क्योंकि प्रसन्नचित्त की बुद्धि शीघ्र अच्छे से आत्मा में स्थिर होती है। अध्याय 2 का 66वां श्लोक। जो योगी नहीं उसको बुद्धि नहीं होती, और बुद्धिमानों की बुद्धि शिव से दूर भोगी व्यक्ति में भावना नहीं होती, और श्रद्धा भावनाहीन शांत प्लस नू जैसे को शांति नहीं होती, अशांत व्यक्ति को सुख कहाँ होगा? नहीं हो सकता ना। अध्याय 2 का 67वां श्लोक। कि जो चंचल मन दैहिक भोगों में विचरण करती हुई कोई भी ज्ञान या कर्म इंद्रियों का अनुसरण करता है, वह मन तीव्र गति से बहती वायु द्वारा पानी में तैरती हल्की नाव की तरह इस भोगी का बेलगाम दौड़ता अश्व रूप मन बुद्धि को हर लेता है। अध्याय 2 का 68वां श्लोक। हे अष्टमूर्ति रूप सहयोगियों रूपी लंबी भुजाओं वाले, इसलिए जिसकी इंद्रियां इंद्रिय भोगों से मन वचन कर्म द्वारा सब प्रकार विकारों से रोक ली गई हैं, उस संयमित मन वाले ज्ञानी और सहज राजयोगी की बुद्धि भली भांति ज्योति बिंदु आत्मस्तार में स्थिर रहती है। अध्याय 2 का 69वां श्लोक। सभी सांसारिक प्राणियों के लिए जो आध्यात्म रात्रि है उसमें राजयोगी जागता है। जिस मानवीय भौतिकता में भ्रमित प्राणी स्वर्गीय दिन समझ जाता है वह पुरुषोत्तम संगमयुगी सच्ची गीता एडवांस ज्ञान के 60 वर्षीय मंथनकर्ता मननशील मुनि के लिए रात्रि है। अध्याय 2 का 70वां श्लोक। चारों ओर से भरपूर अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में जैसे चेतन ज्ञान नदियों की जलधाराएं प्रवेश पाती हैं, वैसे ही जिसकी अच्छी बुरी अपनी सब इच्छाएं यानी संकल्प विकल्पों की लहरें उस अगाध ज्ञान सागर शिव बाबा की जलमयी में समा जाती हैं, अर्थात प्रवेश पाती हैं, वो ही आत्मा शांति के सागर को पाती है, कामनाओं का इच्छुक नहीं पाता। श्लोक से संबंधित शिव बाबा के महावाक्य। तुम बच्चे जानते हो हमको बाप भगवान मिला तो सब कुछ मिला। मुरली तारीख 27 जून 1965 पृष्ठ 2 आदि। अध्याय 2 का 71वां श्लोक। जो पुरुष सारी श्रीमत विहीन सांसारिक भौतिक कामनाओं को यहाँ ही छोड़कर लालसा रहित ममताहीन और निरहंकारी निर्माण नम्रचित भाव का श्रेष्ठ आचरण करता है वह दीर्घकालीन नैष्ठिकी परमब्रह्म की शांति प्राप्त करता है। अध्याय 2 का 72वां श्लोक। हे अर्जुन, यह परम ब्रह्म परम प्लस ईश्वर से उत्पन्न सर्वोत्कृष्ट अव्यक्त और अविनाशी अवस्था है। इसे प्राप्त करके योगी मनुष्य किसी व्यक्ति या वस्तु के मोह में नहीं पड़ता और कल्पांत में महाविनाश की महामृत्यु में भी इस अव्यक्त और अविनाशी स्थिति में स्थिर होकर नंबरवार संगठित पंचमुखी ब्रह्माओं में से ऊर्ध्वमुखी परम ब्रह्म के निर्वाण धाम को पाता है।
ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः।